भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग श्लोक संख्या 24 पृष्ठ संख्या 517। सब लोगों ने निकाल लिया। बोलिए। तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादिनां। तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादिनां। तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादिनां। तस्मात् अतएव ओम, ओम से प्रारंभ करके इति इस प्रकार उदाहृत्य संकेत करके यज्ञ यज्ञ दान दान तपः तथा तप की क्रियाः क्रियाएं प्रवर्तन्ते प्रारंभ होती हैं विधान उक्ताः शास्त्रीय विधान के अनुसार सततम् सदैव ब्रह्मवादिनां अध्यात्मवादियों या योगियों की। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। प्रार्थना बोलेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकायं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरुं श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं तस्मात ओम इति उदाहरित है। तस्मात का मतलब इसलिए, इसलिए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था, क्या बताया था? इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं इसलिए। इसका मतलब क्या है कि जो बात भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में वो पिछले श्लोक से संबंधित है, इसलिए भगवान कहते हैं अतः तस्मात अतएव, है ना। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? ओम तत्सत इति, ओम तत्सत। इस प्रकार से भगवान के तीन नाम वेदों में बताए गए हैं, है? तो अब भगवान के इन तीन नामों की व्याख्या की जा रही है। पहला नाम है ओम, दूसरा नाम है तत् और तीसरा नाम है सत। वेदों में ये नाम मिलते हैं भगवान के, ओम तत् सत। इन नामों की व्याख्या अब भगवान कर रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान ओम की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इसलिए ओम इति उदाहरित्य, ओम इस प्रकार से उच्चारण करके यज्ञ दान और तपस्या की क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। विधानोक्ता शास्त्र में कही हुई विधि के अनुसार सततम माने हमेशा ब्रह्मवादी नाम, जो ब्रह्मवादी हैं, जो वेदवादी हैं, जो वेदों में विश्वास करते हैं, जो वेदों के अनुसार आचरण करते हैं, वे यज्ञ दान और तपस्या के जो कार्य हैं वो हमेशा शुरू करते हैं कहां से? ओम से। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की ओम तद विष्णु परमम पदम ऋग्वेद 1:22-20। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। हाँ, तो ओम से जो है ना शुरू होता है। वैदिक जो अनुष्ठान है वो सब ओम से शुरू होते हैं। जितने वैदिक मंत्र हैं वो ओम से शुरू होते हैं। ओम जो है ये जो वेदों में शब्द आता है प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आता है। प्रेरणा यज्ञ दान तपस्या के कर्म के प्रति प्रेरणा की प्राप्ति करने के लिए ओम शब्द आता है। जैसे कि 18वें अध्याय का 5वां श्लोक निकालिए। ओम में जो है ना किस प्रकार का भाव है? 18वें अध्याय का 5वां श्लोक निकालिए। 5:18-5 ये पेज नंबर 523 है। इसमें भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तद् यज्ञोदानम तपस्या पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। ओम में ये भाव है, ओम का जब उच्चारण करते हैं महात्मा लोग तो उनके अंदर ये भाव आता है, क्या यज्ञ दान तपस्या कर्म कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें अवश्य करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। ओम ये जो अक्षर है ये पवित्र है, और पवित्र बनने की प्रेरणा देता है हमको, तो ये ओम में जो है ये भाव है। अच्छा अब आप निकालिए सातवें अध्याय का आठवां श्लोक, सातवें अध्याय का आठवां श्लोक, सातवें अध्याय का आठवां श्लोक, इसमें भगवान क्या कहते हैं, रसो हम अब सु कौन ते प्रभास्मी सदी सूर्यो प्रणम सर्व वेदेशु शब्दा के पौरु समझु, हे कुंती पुत्र मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो इसमें ओम आया है, भगवान क्या कह रहे हैं ओम के बारे में, क्या कह रहे हैं वैदिक मंत्रों में, वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ। अब तात्पर्य में प्रॉपर लिखते हैं, ये तात्पर्य में जो ना कुछ आखिरी के शब्द हैं, प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। समझ रहे हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रत्येक वैदिक मंत्र में प्रारंभ में ओंकार ये दिव्य ध्वनि है, क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं। ध्यान से सुनिए, जो निर्विशेषवादी हैं वो कृष्ण के असंख्य नामों से कृष्ण को पुकारने से भयभीत रहते हैं। कृष्ण के असंख्य नाम बने हैं उनके गुण और लीलाओं के आधार पर, लेकिन निर्विशेषवादी क्या मानते हैं, निर्गुण निष्क्रिय। तो फिर भगवान के लीलाओं के आधार पर और गुणों के आधार पर जो नाम है तो वे उनसे भयभीत होते हैं, क्योंकि इन नामों से भगवान के गुण और भगवान की लीलाओं का महत्व पता चलता है। तो चूंकि भगवान के गुणों को भगवान की लीलाओं को महत्व नहीं देना चाहते हैं, वो क्या मानते हैं कि भगवान के कोई गुण नहीं है और भगवान की कुछ लीलाएं नहीं होती हैं, इसलिए क्या करते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावनामृत को जानता है वो धन्य है, जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उसके उनके प्रति अज्ञान बंधन है। अगर कृष्ण के गुण और लीलाओं को नहीं समझा और ओम का उच्चारण करते हो तो भी आप बंधन में हो, आप मुक्त नहीं होते, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। तो ओम से जो है ना प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा रहस्य निकाला है। अच्छा अब आप निकालिए आठवें अध्याय का ग्यारहवां श्लोक, पेज नंबर 279 है, ग्यारहवां श्लोक आठवें अध्याय का, निरक्षरम वेद विदो वदंती विशंति अन्यते यो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। भगवान कह रहे हैं जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। अब इसके तात्पर्य में भी हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जो ओम के विषय में है। प्रभुपाद लिखते हैं, ये दूसरा पैरा है, ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। तो ओंकार का उच्चारण करने के लिए कौन से व्रत का पालन करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। ये प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन यानी अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कि जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि ओम के उच्चारण से लाभ तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। और चूंकि कलयुग में ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण ही नहीं है, है ना, इस सर्व सामान्य के लिए ओम के उच्चारण से लाभ उठा पाना संभव नहीं है। इसलिए क्या विधि है? बहुत सरल, हरे कृष्ण महामंत्र की है। भगवान चैतन्य इतने दयालु हैं, कलयुग के पतित जीवों पर कृपा करने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। इस बात को जो है बड़े ध्यान से हमें समझना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अच्छा, अब इसी में ही 13वां श्लोक देखिए। 13वां श्लोक यानी 12वां को छोड़ करके 13वां श्लोक देखिए। ओमित्ये काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण याति याति यह प्रयाति तेजन्देहम सयाति परमाम गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तात्पर्य में क्या लिखा है अब ध्यान से सुनिए। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में ये ओम सन्निहित है। अगर आप हरे कृष्ण का उच्चारण करते हैं तो ओम अपने आपस में आ गया। इस योग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। तो हरे कृष्ण के उच्चारण से अगर आप भगवान के गुण रूप लीलाओं का अगर अनुभव कर रहे हैं तो फिर उनके धाम में जाएंगे और उनकी लीला में आप स्थान प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सबसे ऊंची सफलता है, है ना। तो इससे जो है आपको बहुत कुछ जानकारी मिली है कि ओम के उच्चारण में और हरे कृष्ण के उच्चारण में क्या अंतर है। अच्छा, अब आप निकालिए 9वें अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुर्वेच। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ये यानी जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। तो इसमें भगवान ओम को क्या कहते हैं? वेद्यम, जानने योग्य है और पवित्र है। ओम जानने योग्य है और पवित्र है, और इसी से ही ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद का विस्तार होता है। अब तात्पर्य में उतना हिस्सा हम पढ़ेंगे जिसमें प्रभुपाद जी ओम की व्याख्या करते हैं। ये आखिरी के 3 पंक्तियां हैं। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है एक दिव्य ध्वनि कंपन है, और यह कृष्ण भी है। क्योंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि ओम कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। अगर आपने कृष्ण की सेवा कर ली, कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपने तीनों वेद पढ़ लिए अपने आप और ओम का भी उच्चारण कर लिया। हाँ, कुछ अलग से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप निकालिए 10वें अध्याय का 25वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, महर्षिणाम भृगुरहम गिरामास्मे कमक्षरम यज्ञानम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयहम। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। अब इसमें उतना हिस्सा जो ओम से संबंधित है और भगवान के नाम से संबंधित है उतना पढ़ूंगा मैं। दूसरी पंक्ति है तात्पर्य की, समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है, समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। ये सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। तो इससे पता चला ओम के बारे में भी और यज्ञ के बारे में। अब ओम के बारे में काफी विस्तृत विवरण एक पुस्तक है, गायत्री महिमा माधुरी, इसमें से मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ओम का अर्थ क्या है? सबसे पहला मंत्र प्रणव यानी ओम है। वेद ओम का महिमा गान करते हैं कि ये वेदों का मूल है, संपूर्ण सृष्टि का कारण है, और इस कारण से प्रत्येक वैदिक मंत्र में ओम सबसे पहले आता है। ओम ये जो है बीज मंत्र है समस्त वैदिक साहित्य का, और जितने भी प्रकार के अध्यात्मवादी हैं वे सब इसका उच्चारण करते हैं, और इसमें दूसरी दूसरी भाषाओं में भी भगवान को संकेत करने की शक्ति है। ओम में अंग्रेजी में जो भगवान है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो अंग्रेजी में भी उस शब्द आता है ओम का। अंग्रेजी भाषा में ओमनी जो शब्द है उसका मतलब क्या है? सर्वाधिक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। जैसे ओमनी प्रेजेंट, ओम आया ना, ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी, सर्वव्यापक है भगवान, ओमनी प्रेजेंट। और ओमनी पोटेंट है ना, सर्वशक्तिमान है भगवान, ओम आया। ओमनिसियंट, ओमनिसियंट अंतर्यामी, सर्वांतर्यामी है भगवान। तो ये जो है ना भगवान का वर्णन होता है अंग्रेजी भाषा में भी। और ईसाइयों की जो प्रार्थना है जो समाप्त होती है तो अमीन से होती है, अमीन ईसाई लोग, उसमें भी ओम, ओम का ही एक प्रकार का उच्चारण है। और अमीन, अच्छा उसमें अमीन बोलते हैं, और मुसलमान बोलते हैं अमीन, ईसाई लोग बोलते हैं अमीन, और मुसलमान लोग बोलते हैं अमीन। तो ये ओम का ही एक प्रकार का उच्चारण है। प्रत्येक श्वास में भी व्यक्ति जो है बिना किसी जानकारी के ओम का उच्चारण करता है। जब श्वास लेते हैं ओम, वो श्वास जो अंदर जाती है ओम है ना, जब निकलती है तो वहां वो समाप्त होता है ओम। शरीर के जो है ना जो कंपन है उसमें भी और ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो भी इसी शब्द ध्वनि से उत्पन्न होता है। जो बच्चा है वो भी रोता है तो कैसे बोलता है? बच्चा रोता है तो ऊं ऊं करता है ना, ऊं ऊं, तो वो भी ओम है। और समुद्र गर्जना करते हैं, समुद्र भी गर्जना करते हैं, तो उन्हें भी अगर आप देखेंगे तो ओम की ध्वनि आती है समुद्र की गर्जना में भी। और जो मधुमक्खियां हैं वो भी गुंजार करती हैं, उनकी गुंजार में भी ओम शब्द आता है। और जो संगीतज्ञ है, संगीतकार है, वो भी गाता है, जब आवाज निकालता है संगीत में है ना, ओम की ध्वनि आती है। ओम वेद है और भगवान का ज्ञान है, ओम नाद है भगवान का, ओम नित्य है और अविनाशी शब्द है। ओम जो शब्द है ये बड़ा विश्वव्यापक है। और श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु और जो गौड़ी वैष्णव है उन्होंने ही पूरा आध्यात्मिक जो महत्व है इसका प्रकट किया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रणव सर्ववेदेशु, मैं समस्त वेदों में ओम अक्षर हूं। तो भगवान को संबोधित करने के अलावा ओम जो है कृष्ण की बंसी ध्वनि से अलग नहीं है। कृष्ण की बंसी ध्वनि में भी जो नाद निकलता है उसमें भी ओम है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग आज के ओम के बारे में केवल निर्विशेष धारणा रखते हैं, भगवान के रूप की गुणों की कल्पना नहीं करते हैं ओम में। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ओम का अर्थ है श्री कृष्ण परमेश्वर। ओम शब्द जो ध्वनि है ये समस्त वैदिक मंत्रों का प्रारंभ होता है, जिसमें भगवान का संबोधन हो रहा है। क्योंकि निर्विशेषवादी बहुत भयभीत हैं कि भगवान का जो है वो संबोधन करना नहीं चाहते हैं और भगवान के असंख्य नामों का संबोधन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो पसंद करते हैं ये दिव्य शब्द ध्वनि ओम का उच्चारण करने की। परंतु वे नहीं समझ पाते कि ओंकार भी भगवान कृष्ण का ही शब्द रूप है। ओम जो है ये कृष्ण का शब्द अवतार है, ये कृष्ण का जो है प्राकट्य है, ये कृष्ण के शरीर का जो है क्या है, ब्रह्म तेज है। कृष्ण के जो निर्विशेषवादी हैं वो पसंद करते हैं ओम का उच्चारण करना, परंतु हम चाहते हैं कृष्ण के लीलाओं का कीर्तन करना, क्योंकि उनके जो व्यक्तिगत गुण हैं वही ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ओम ये सत का चिन्ह है, सत यानी सनातन, परंतु इसमें आनंद नहीं है और ज्ञान नहीं है। ओम तत्सत का अर्थ है परम सत्य, सत का अर्थ है नित्य, इसलिए ओम तत्सत का अर्थ हुआ कि अरे परम सत्य नित्य है। तो बहुत ज्यादा निर्विशेषवादी जो सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग यही विश्वास करते हैं कि ध्यान का लक्ष्य है ओम, और ओम से कि निर्विशेषवादी विश्वास करते हैं कि ओम पर ध्यान करने का जो लक्ष्य है वो क्या है, अपनी व्यक्तिगत सत्ता को खो देना और परम ब्रह्म में मिल जाना। परंतु उपनिषद और जो अनुभवी गौड़ी वैष्णव हैं, आचार्य हैं, जैसे जीव गोस्वामी जैसे लोग हैं, वे समझाते हैं कि ओम जो है भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें साथ साथ उनकी जो भगवान की जो शक्तियां हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जो श्रीमती राधिका हैं और उनके जो नित्य दास हैं, जो जीव शक्ति है, व्यक्तिगत आत्माएं हैं, वो भी शामिल हैं। ओम जो है ये तीन अक्षरों का संयोग है, आ उ और मा। आ ये अक्षर क्या है, कृष्ण है, और उ अक्षर राधा है, और मा अक्षर जीवात्मा है। जो गोस्वामी लोग हैं तो वो समझाते हैं कि जो ओंकार है ये पूर्ण रूप से भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, और उन्होंने ओंकार का विश्लेषण किया है कैसे, तीन अक्षरों से बना है, आ उ और मा। अकारेण हरे कृष्णा। अकारेण उच्यते कृष्ण। ये अक्षर अकार आ ये कृष्ण का बोधक है जो कि सर्वलोकैक नायक, जो समस्त जीवों के और समस्त प्राणियों के नायक हैं, जितने भी लोक हैं भौतिक और आध्यात्मिक उनके नायक हैं, परम नायक हैं भगवान नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। और अक्षर उ ये श्रीमती राधा रानी का द्योतक है जो कृष्ण की आलादनी शक्ति है। और मा अक्षर मकार ये सूचित करता है जीव को। इस प्रकार से ओम जो है कृष्ण और उनकी शक्ति और उनके नित्य सेवकों का संयोग, पूर्ण संयोग है। दूसरे शब्दों में ओम जो है कृष्ण का और उनके नाम का, उनके यश का, उनकी लीलाओं का और उनके विस्तारों का, उनके भक्तों का, उनकी शक्तियों का और जितनी भी चीजें कृष्ण की हैं उन सब का